4 अध्याय 11 श्लोक संख्या 4
एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणव्यतिकराद्राजन् मायया परमात्मनः
एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणगति कराजन माया परमात्मन अनुवाद शास्त्र द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद इसी भक्ति विधान से स्वामी श्री कृपाजी के द्वारा मनु ने कहा, हे राजा ध्रुव, श्री भगवान को मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से सृष्टि पालन तथा संहार होता रहता है। तात्पर्य, पहले 5 तत्वों से उत्पत्ति होती है, फिर गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्थिति पालन होती है। जब बालक उत्पन्न होता है तो माता पिता तुरंत उसके पालन की व्यवस्था करते हैं। संतान के पालन की यह प्रवृत्ति न केवल मानव समाज में पाई जाती है, वरन पशु समाज में भी पाई जाती है। बाल भी अपने शिशुओं की देखरेख करते हैं, यद्यपि उनमें अन्य पशुओं को खाने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। गुणों की अन्योन्य क्रिया से उत्पत्ति पालन तथा संहार अवश्यम भावी है, किंतु हमें यह जानना चाहिए कि यह सब कुछ श्री भगवान के दक्षता में घटित होता है। इसी विधि से सब कुछ होता है। उत्पत्ति तो रजोगुण का कार्य है, पालन सतोगुण का और नहार तमोगुण का। हम यह देख सकते हैं कि जो सतोगुणी है वह रजोगुणी या तमोगुणी की तुलना में अधिक काल तक जीवित रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सतोगुणी हो जाता है वह उच्च लोकों को जाता है, जहां उसका आयुष्य बढ़ जाता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा सन्यासी जो कि सतोगुणी होते हैं उच्च लोकों को जाते हैं। जो गुणों से परे हैं वे भी सतोगुणी होते हैं। इंग्लिश जो रिटर्न शुद्ध सत्व और इसे ला सकते हैं, तो मिस्टेक करता हूं। जो गुणों से परे हैं वे शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं और वे वैकुंठ लोक में शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। स्वयं वो मनु ध्रुव महाराज को पाप कृत्य रोकने के लिए सत्व ज्ञान दे रहे हैं। हमारे पाप करने का कारण है अज्ञानता, और इसलिए आवश्यक है सही ज्ञान में स्थित होना। और सही ज्ञान का प्रारंभ होता है, जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो जड़ और चेतन में भेद समझना प्रारंभ है वास्तविक ज्ञान का। जब तक सभ्यता और उसके अंतर्गत व्यक्तिगत व्यक्तिगण इस आधारभूत ज्ञान से अधिज्ञ हैं, तब तक वो समाज अंधकार में कहा जाएगा। यह आधारशिला है ज्ञान की, एलिमेंट्री नॉलेज, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और अज्ञान प्रारंभ यही से होता है कि हम शरीर हैं। मैं और मेरा का जो भाव है, जो शारीरिक देहात्म बुद्धि के आधार पर होता है, वो सभी प्रकार के अज्ञानता का आधार है। और फिर उस अज्ञानता में आगे करके आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता, सब प्रकार के पाप कृत्य कर सकता है।
कुछ भी और नरकों में जा सकता है और इस प्रकार चौरासी राज्यों में भ्रमण कर सकता है। तो इसलिए सही ज्ञान में सीखना बहुत जरूरी है। तो माया यानी भ्रम, श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में व्यासदेव इसका वर्णन करते हैं कि परम सत्य क्या है और माया क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि अन्वय सरस्य अधिज्ञा स्वरा तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे यत सूर्य तेजो द्वारी प्रदान यथा विनिमयो यो अमृषा स्वेना धामना सदा निरक्तुभकम सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक के अनुसार सत्यम क्या है, वास्तविकता क्या है, वो है भगवत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, वो वास्तविकता सत्यम परम धीमहि। मैं उन परम सत्य का ध्यान करता हूं और उन परम सत्य का ध्यान करने से हम सत्य और माया में भेद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके आगे बताया मुह्यंती यदि सूर्य बड़े बड़े देवता कर भी इससे मोहित है, तो सामान्य जीव की क्या कहना, क्या कहना। तो इसलिए सही और गलत में पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक कोई परम सत्य से संपर्क नहीं है। और फिर आगे बताया गया इस श्लोक में तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा। अमृषा कहते हैं वास्तविक प्रतीत होने वाला, लगता है जैसे सही है। तो ये जो भौतिक जगत है ये तेज वायु यानी कि पानी और मृदाम यानी कि मिट्टी, इन तीनों का विनिमय है। और ये विनिमय से सृष्टि, पालन और प्रलय जो इस श्लोक के तीन विषय हैं वो हो रहा है और उनको करवा रहे हैं। उसके पीछे जो शक्ति है वो है तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो विनिमय है ये अपने आप नहीं होता है, ये तीनों गुण। और अंततः जैसा कि वो प्रथम श्लोक में बताया यहां पर बताया गया कि ये सब कराने वाला वो परम सत्यम ही नहीं, उसके द्वारा उसकी अध्यक्षता में यह सब होता है, स्वतः नहीं होगा, जो आधुनिक वैज्ञानिकों की महान भूल है कि ये सब जड़ पदार्थ अपने आप से जीवन का सृजन कर रहे हैं। तो इसको निरस्त कर दिया गया है भागवतम के प्रथम श्लोक में ही कि जो परम सत्य है वो अभिज्ञ है, वो कॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियस नहीं है। तो सत्यम जो है वो कॉन्शियस ही है और उसके विपरीत, उससे अलग ये अनकॉन्शियस ये जड़ पदार्थ है तेजो वारी मनाम। लेकिन भगवान की जो ये माया शक्ति है इसके द्वारा ये सत्य प्रतीत होता है, एज इट रियल, बिल्कुल रियल प्रतीत होता है। जो जीव इससे प्रभावित है उनको, जो जीव इससे मुक्त है वो इसको तत्वतः समझ सकते हैं कि ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता नहीं है मतलब कि ये परम सत्य है कि समझ के बिना का समझ है, यानी कि जो परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधित इस
तेजो वायु और ये भौतिक संसार को देखना नहीं बल्कि अलग तरीके से देखना है, तो वो इसलिए माया है, गलत है, इल्यूजन है। और इसलिए इसमें बार बार प्रलय होता है, सृजन होता है, यानी कि टेम्परेरी है। जबकि जो सत्य है वो नित्य है, सच्चित आनंद है। इसलिए माया के जब वशीभूत कुछ भी होता है तो वो ये तीनों जो गुण हैं उनसे अलग हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूपों को ढक जाता है वो सब। तो वर्तमान में हमारी ऐसी स्थिति है कि हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए कहा गया है कि हम माया ग्रसित हैं। तो जो माया ग्रसित जीव है उनको अमृषा ये बिल्कुल रियल लगेगा। जब तक हम परम सत्य के संपर्क में आकर के अपने ज्ञान को हटाएंगे नहीं तब तक बिल्कुल सत्य रहेगा। जैसे कल एक विद्यार्थी आए थे तो कह रहे थे कि मेरे फ्रेंड सब बोलते हैं कि ये सब क्या पता कि ये सही है कि नहीं। तो लोग को बहुत सामान्य लगता है कि हाँ ये तो जैसे इसका तो क्या पता है सही है कि नहीं है शास्त्र, लेकिन ये भौतिक जगत सत्य है तो पता है, उनको बहुत कॉन्फिडेंस है डॉक्टर यस ये सब बिल्कुल रियल। तो वो अमृषा लगता है। लेकिन यदि हम रजो और तम और सत्व अगर सत्वों में स्थित है तो ये समझना बड़ा आसान है, काफी आसान है कि ये सत्य नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति तमोगुण से आच्छादित है उसके लिए डिफ्रेंशिएट कर पाना कि ये सत्य क्या है और असत्य क्या है बड़ा मुश्किल है गुणों के प्रभाव की वजह से। तो रजोगुण में सत्य को समझना मुश्किल है और संघर्ष होता है, सत्वगुण में ज्ञान आता है और तमोगुण में अंधकार ही अंधकार रहता है। तो इस प्रकार से हर चीज और हम भी तीनों गुणों से इस तरह से प्रभावित हैं कि उसके भ्रम से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो पूरी वैदिक संस्कृति है उसमें जीव को उसमें पूरी समाज को धीरे धीरे सत्वगुण की तरफ ले जाने का प्रयास, जिससे लोग ये समझने में सक्षम हो पाए कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा हैं। और इसके विपरीत जब भी समाज में रजो और तमोगुण को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग और अधिक ढक जाएंगे अंधकार से अज्ञानता से और उनके लिए सत्य को समझना और अधिक मुश्किल हो जाएगा। तो जो भक्तगण हैं उन्होंने परम सत्य को समझने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, लेकिन ये एक बहुत लंबा रास्ता है क्योंकि बहुत बहुत लंबे समय से हम माया से ग्रसित रहते आए हैं, इसलिए आसान नहीं होगा ये माया से मुक्त हो पाना। और इसलिए हम देखते भी हैं बहुत अच्छे भक्त भी अनायास माया के शिकंजे में आ जाते हैं, जिन्होंने बहुत वर्षों तक भक्ति सेवा भी की है वो भी। तो हमें आश्चर्य होता है कि कैसे हुआ, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, माया कुछ भी कर सकती है। मुह्यंती या तो सूर्य बड़े बड़े देवताओं को भी ये मोहित कर सकते हैं, ये ब्रह्मा जी को भी मोहित कर सकते हैं, ये इंद्र को भी मोहित कर सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया, ये कृष्ण क्या ये भगवान हो सकता है? तो फिर जो साधारण व्यक्ति है वो कैसे कृष्ण को आसानी से भगवान मान ले? उसको तो निश्चित रूप से मोह होगा कि मैं देखा नहीं, जानता नहीं, ये सब पहले हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न बहुत उठते हैं सब दिमाग में। तो मुह्यम जी सबको मोहित किए हुए, मूल कारण है मोह का कि हम लोग भोक्ता बनना चाहते हैं इसलिए मोहित हैं, लेकिन वो भोग करने की जो लालसा है उससे निकल पाना वो बद्ध जीव के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति उसके हाथ में नहीं है, वो भी माया द्वारा करते हैं, उसकी डिजायर उसकी इच्छाएं भी माया के द्वारा संचालित हो रहे हैं, तीनों गुणों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। इसीलिए जो तमोगुण व्यक्ति है वो लगभग जानवर जैसा है, उसके पास उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति लगभग नहीं है, नगर नहीं जाती, बहुत कम है, इसीलिए उसके लिए उसका उपयोग का सदुपयोग करना बड़ा मुश्किल है। तो यहां पर सैंधु मनु ध्रुव महाराज को ये बता रहे हैं कि तुम जो ये सोच रहे हो कि यक्षों ने उसको मार दिया और अपना दुश्मन को अब आप समझ रहे हो और उनके पूरी प्रजाति को खत्म कर देना है, यानी अभी वो रजोगुण के प्रभाव की तरफ आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्रोध अत्यधिक क्रोध प्रकट हो रहा है और वो मेरा दुश्मन है, इस तरीके से वो देख रहे हैं, ये सब यक्ष मेरे दुश्मन है। तो अभी वो तीनों गुणों के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं, सैंधु मनु ये समझ रहे हैं, इसीलिए उनको अभी ये समझाना जा रहे हैं कि अभी तुम वैष्णव की तरह कार्य नहीं, तीनों गुणों में प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं। वैष्णव तीनों गुणों से परे होकर के कार्य करता है, तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि ध्रुव महाराज थे तो वो क्रोध भी कर रहे थे, तो महाप्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि भक्त क्रोध नहीं करते हैं, तो भगवान भी क्रोध करते हैं, भगवान ही बोलते हैं यदा परित्राणाय साधनाम विनाशाय दुष्टताम, जो दुष्कृति न है उनका नाश करने के लिए मैं आता हूँ, तो भगवान भी क्रोध करते हैं और वैष्णव भी क्रोध करते हैं माया के ऊपर, और मायाग्रसित जीवों को माया से निकालने के लिए प्रयास करते हैं, पाषंड दमन करते हैं, लेकिन वो तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं है, वो गुणातीत है। लेकिन ध्रुव महाराज अभी एक्सेसिव लिमिट से जा रहे हैं बाहर, अभी वो रजोगुण और रजोगुण के और तमोगुण के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए सैंधु मनु आएंगे अभी लोग। तो ध्रुव महाराज जैसे महान भक्त हैं, लेकिन फिर भी देखिए भगवान का दर्शन है हुआ है उनको और उनका निश्चित है भगवत धाम जाना, लेकिन फिर भी गुण काम करते हैं, फिर भी कभी कभी, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मंतव्य जो मेरे भक्ति में लगे हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली बहुत घिनौना कार्य भी कर दें, क्योंकि जो पूर्व जन्म है, पूर्व जन्मों है, बहुत सारे जन्म है, उनसे जो ये अटैचमेंट चला रहा है, तीनों गुणों से प्रभाव चला रहा है, तो वो उसके कुछ मात्रा हो सकता है कभी कभी प्रकट हो जाए, बहुत डीप रूटेड है, इसलिए ऐसा संभव है ऐसा हो जाना, लेकिन यदि वो भक्ति में दृढ़ता से लगा हुआ है तो जल्दी वो इस कलमश से मुक्त हो जाएगा। तो यानी कि हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है, सामान्यतः हम भी ये अनुभव करते हैं कि जब हम भक्ति सेवा प्रारंभ करते हैं तो माया का प्रभाव और उससे निकलने में अंतर को स्पष्ट अनुभव करते हैं, बिल्कुल फ्रेशनेस अनुभव करते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करते ही कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा लगता है कि गंगा ने कितने जन्मों से भूखे प्यासे थे और आज किसी ने पानी लिया। ओ मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, यही तो सुनना चाह रहा था। गंगा ने कब से सुनना चाह रहा था ऐसा प्रतीत होता है, यही मैं सुनना चाह रहा कि मैं मरता नहीं हूं। नहीं कुछ सुना नहीं जाता, बोलते तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, लेकिन आज किसी ने बताया कि तुम मरोगे नहीं, तुम मोह कभी नहीं मर सकते, कर्म से अमृत मिल जाता है, ऐसे बच गए। कितने सर सुना ऐसा अनुभव करते हैं। और रजो और तमो में जो पूरा संसार संचालित है, जैसे हम भक्तों के संपर्क में आते हैं जो सत्व और शुद्ध सत्व में स्थित हैं, और हम भी उसके प्रभाव में आने से और भक्ति सेवा करने से सत्वगुण की तरफ चलते हैं, तो क्लियर डिस्टिंक्शन हमको लगता है कि हृदय से काम क्रोध लोभ मोह ऐसे निकल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हमारी ये स्वाभाविक स्थिति है। प्रभुपाद जी एक डिस्कशन में बता रहे हैं कि अथॉरिटी, तो एक प्रश्न पूछा किसी ने कि सब लोग अपने अपनी बात करते हैं, आप भी अपनी बात करते हैं, आप बता रहे हैं ये सही है, कोई बोलता है वो सही है, कोई बोलता है ये, कैसे पता लगाएं क्या सही है, सब लोग अपने बीमार होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे एक भूखे आदमी को जब खाना दिया जाता है तो वो अपने आप जान जाता है कि उसकी भूख मिट रही है, उसी प्रकार से जब जीव को वास्तविक ज्ञान मिलेगा तो उसे जो अनुभव होगा पूर्ण संतुष्टि होगी, नो प्रॉब्लम। तो वो अथॉरिटी जिसको नो प्रॉब्लम है, जिसकी प्रॉब्लम खत्म है, सब कुछ क्लियर है क्या है और सिचुएटेड इन द राइट पोजिशन, ऐसे व्यक्ति से वो अथॉरिटी। लेकिन प्राथमिक आवश्यकता उसके लिए है कि व्यक्ति को सिंसियर होना चाहिए, तभी वो रियल अथॉरिटी को समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो वो क्वालिफिकेशन भी है यदि कोई वास्तव में गंभीर है परम सत्य को जानने के लिए। तस्मात गुरु प्रपद्य जिज्ञासु श्रेय उत्तम, यदि कोई श्रेय को वास्तव में जाने के लिए उत्सुक है तो वास्तविक वस्तु अत्र वास्तविक वस्तु के संपर्क में आते ही उसको आइडेंटिफाई कर लेगा ये वास्तविक है, इसी की मुझे तलाश है। तो इस प्रकार से अनुभव हमको होता है जब हम संपर्क में आते हैं सही ज्ञान से। लेकिन ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, कुछ समय बाद में वो जो फ्रेशनेस है वो नहीं रहती सामान्यतया। जो स्टार्टिंग में जब हम माया से निकलते हैं बाहर आते हैं तो एकदम से जो फ्रेशनेस है वो फिर एक रूटीन जैसा हो जाता है कई बार। तो उसका कारण है कि प्रारंभ में भगवान हमको एक तीव्र डोज देते हैं अमृत की, रियलाइजेशन हमको हमको फिक्स करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हमारा कन्विक्शन। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप हाथ पकड़ के चलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब वो चल लगता है तो फिर उसको भी छोड़ते हैं जिससे कि वो अभी अपने आप चलना सीखे। तो ऐसे ही थोड़े समय बाद में फिर भगवान अभी भक्त को अपने आप प्रयास करने के लिए कहते हैं। तो उस समय भक्त को ऐसा लगता है कि क्या हुआ मुझे, वो जो फ्रेशनेस थी वो जो सब डर हो रही है क्यों। तो उस समय आवश्यकता है, वहां पर डर है कि हम पुनः इस माया में दोबारा से गिर सकते हैं, वो टेस्ट होगा, परीक्षाएं, अनेक अनेक परीक्षाएं, माया की परीक्षाएं, हर दिन परीक्षा, ऐसा समझ लीजिए हर दिन हर क्षण परीक्षा। हम सोचेंगे तो एक परीक्षा पास हुए, अभी तो मैं शुद्ध भक्त जाता बन गया हूं, अभी तो लगभग समाप्त हो गया है नहीं, फिर दोबारा कोई और परीक्षा आएगी, फिर कोई और परीक्षा आएगी, परीक्षा 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 बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि बहुत कर्मश है, इसलिए बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तो यहां गुरु महाराज ये परीक्षा से गुजर रहे हैं, भगवान के दर्शन हो गए सब हो गए, लेकिन फिर भी अभी अभी कम से वो और वहां पर पहुंच गए, इतना उनको बचाने। ऐसे ही भक्तों को भी एक दूसरे को मदद करना चाहिए माया की परीक्षाओं से निकालने के लिए। तो जब हम डर महसूस कर रहे हों, भक्ति में उत्साह नहीं हो, भगवान की सेवा करने का उत्साह नहीं हो, तो समझ लेना चाहिए माया के द्वारा परीक्षा चल रही है, अटैक हो रहा है। व्यक्ति उत्साह नहीं है सेवा करने का, कीर्तन करने का उत्साह नहीं है, श्रवण और कीर्तन से प्रारंभ होती है सेवा, उत्साह नहीं है, तो निश्चित रूप से माया के प्रभाव में हम आ रहे हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि फिट हुआ ठिकाने आती है। हम सोच रहे थे कि क्या है भक्ति, सामान्य है, सामान्य है, लेकिन फिर जब माया दोबारा से हमको अपना प्रभाव दिखाती है तब हमको फिर इसमें आता है, ओ जो मुझे अनुभव हो रहा था वो सामान्य नहीं था। फिर दोबारा से वो प्रश्न आए थे, दोबारा क्लियर हो जाता है माया थी, ये माया है और ये। तो बार बार ऐसे, अनेक बार ऐसे इंसिडेंट से गुजरते हैं, तो हमको बार बार जब इंसिडेंट से गुजरने पे अधिक से अधिक क्लियर होता रहता है, ये माया है और ये सच्चाई, ये माया है ये सच्चाई, ये माया है ये सच्चाई। तो जितने ज्यादा हम ऐसी परीक्षाओं से गुजरते हैं उतना ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो जाता है, माया क्या है और कृष्ण क्या है। तो जितना अधिक ये स्पष्ट रहता है उतना अधिक हम सचेत रहते हैं और उतने अधिक जल्दी अपने को पहचान सकते हैं कि कैसे हम कम माया में गिर रहे हैं, उतने जल्दी हम अपने को प्रिकॉशन से बचा सकते हैं। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि वो कैसे भक्तों को इस पूरे ऑर्डियल यानी कि इस पूरी यात्रा से कैसे वो ले जा रहे हैं भक्तों को, थोड़ा थप्पड़ मारते हैं, थोड़ा सा पुचकारते हैं, दोनों काम कर रहे हैं, बहुत कृपामयी पिता के तरीके से हमको इस पूरी यात्रा में वो ले जा रहे हैं। तो जब चाहता पड़ता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन क्या करें, जरूरी है तो सिखाना पड़ता है। लेकिन फिर थोड़े समय बाद जब हम, अगर थोड़े समय बाद यदि हम प्रोसेस को पकड़े रखेंगे, यदि हम ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इसको किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, तो हम देखेंगे कि थोड़े समय बाद निकल गए और फिर हमारा कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा। यस, और स्ट्रांग फेथ हो जाएगा कि चैंटिंग सेव्स अस, भगवान का जप करना हमको बचाता है। जितने ऐसी परीक्षाओं से गुजरते जाएंगे यदि हम सिंसियर हैं तो हमारा कन्विक्शन और स्ट्रांग होता रहेगा और अधिक फिक्स होते रहेंगे। इससे प्रभुपाद जी बहुत बल दिए हैं कि कभी भी ये रूल्स रेगुलेशन में स्लैकनेस नहीं बरतनी चाहिए, ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते करते ही हम परम धाम परम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद जी बता बोलते हैं, डोंट थिंक दैट दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट लीड यू टू द डिजायर्ड गोल, दिस विल। ऐसा मत सोचो कि एक डांस और डांसिंग और चैंटिंग आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा, इट विल, इट विल। तो आश्वासन दे रहे हैं बार बार, तो क्योंकि प्रभुपाद और ऐसे महान आचार्य माया से निकल गए, सक्सेस रियल सक्सेस, माया से निकलना ही रियल सक्सेस और उसको निकल गए, ग्लोरियस। जो लोग इस माया को तर गए जन्म से हमेशा निकल गए हैं और भगवान की सेवा में फिक्स हो गए हैं परमानेंट, वो लोग कलाई ग्लोरियस, अंततः उन्होंने माया को जीत लिया। तो माया ही सभी दुखों का कारण है, सब पीड़ित है। कभी कभी लोग हंसते हैं, दांत निकालते हैं, लेकिन वो सब माया भ्रम है, कुछ समय के लिए दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हो, फिर देखो आपको चूना बनाएंगे माया, फिर दोबारा से नहीं करने कष्ट, फिर दोबारा से आपका हृदय डिप्रेशन है। एक सिंपल बात हम यदि देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि जब भी कृष्ण भक्ति के संबंध में हमारे हृदय में कुछ शंकाएं या स्लैकनेस आती है तो हम डल अनुभव करते हैं, करते हैं, इसका मतलब माया है, वो बेकार है, वो व्यर्थ है। और जैसे ही सेवा करने का उत्साह आता है तो आनंद से कूदते हैं, तो हमें उसी स्टेज में रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब जब हम भगवान की सेवा करने का उत्साह आता है तब तक जो अनुभूति होती है तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, और वो हमेशा कॉन्स्टेंटली वही अनुभूति आती है और वो बढ़ती रहती है, यही प्रूव करता है कि वो सत्य है। जब भी भगवान की सेवा करने का उत्साह आता है तभी वो एक विशेष आनंद हम अनुभव करते हैं हर कोई, तो सामान्य सबका अनुभव है कि जैसे हम जैनिंग करते हैं ध्यान पूर्वक यदि करें तो ऐसे अनुभव करते हैं कि माया ये निकल रही है बाहर, भ्रांतियां और सब उदासी ये सब जा रही है, उत्साह आ रहा है। तो श्रवण से कीर्तन, कीर्तन जीव का स्वभाव है, कीर्तन करना ये उसका स्वभाव है, ये उसका भगवान के साथ नित्य संबंध है, कीर्तन करना, ग्लोरीफाइंग कृष्णा, भगवान का कीर्तन करना जीव का एकमात्र कार्य है। तो ये माया के प्रभाव से हमारे अंदर कीर्तन करने की इच्छा नहीं है, डलने भगवान वृंदा करने की इच्छा नहीं, क्योंकि माया के प्रभाव में। तो यदि हम ये श्रवण को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जैसे जैसे माया के प्रभाव से निकलते हैं स्वाभाविक कीर्तन करने की इच्छा प्रकट जाती है, भगवान का गुणगान करने के लिए हम रुक नहीं सकते हैं यदि हम अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, हमारा हृदय इच्छा करेगा प्रचार करो बोलो दूसरों को, क्योंकि हम अंदर से इतने उत्साही इतने आनंद पर होकर। तो यदि हमारे हृदय में कीर्तन का उत्साह नहीं है तो इसका मतलब श्रवण नहीं हो रहा है, तो श्रवण को मजबूत करें तो फिर कीर्तन में आनंद आए, और फिर श्रवण कीर्तन से स्मरण, और फिर ऐसे धीरे धीरे आगे चल करके सब चीज स्पष्ट होगी। तो सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, यदि ये श्रवण और कीर्तन से का जो प्रोसेस है इसमें हम थोड़ा भी ढील बरतेंगे तो कोई बचा नहीं पाएगा, फिर उन्हें ऐसे उदास हो जाएंगे, फिर डाउट क्रिएट हो जाएंगे माइंड, फिर लड़ी रही तो क्या है, वही उदास आ जाएंगे और वही भक्त दर्शन छोड़ करके फिर हम माया में चले जाएंगे, अब कभी सुखी नहीं होंगे। इसलिए सावधानी रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब जो समस्याएं हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, बस गिर रहे हैं गिरते हैं कभी कभी, ये सब क्या है, इसलिए जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट बी संन्यास ब्रह्मचारी आर नॉट केयरफुल इन देयर डीलिंग्स विद वुमेन, दिस इज द रूट कॉज। जब तक हम थोड़ा सावधान रहे तो ये माया हमको छू नहीं पाए। तो माया ये जो इंद्रियदृष्टि की भावना है, ये माया ये परेशान तो करेगी निश्चित, ऑब्स्टेकल तो आएंगे, लेकिन ये हमें पराजित तब तक नहीं कर पाएगी जब तक हम सावधान हैं, जब तक हम भगवान, जब तक हम गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश, रूपा जी के द्वारा जो प्रोग्राम दिया गया है, जो विशेष स्टार्टिंग चैंटिंग, यदि हम उसमें गंभीर हैं, हर दिन कम से कम 16 माला पूरी शक्ति से होनी ही चाहिए, जब तक ये दृढ़ निश्चय करके हम लोग नहीं कर रहे हैं तब तक निश्चित रूप से ये माया परेशान करेगी और आपको पूरा कवर कर सकती है। लेकिन यदि हम ये रूल्स रेगुलेशन में स्थित हैं तो परेशान होंगे लेकिन पराजित नहीं होंगे, माया पराजित नहीं कर पाएगी, दे विल विन, माया नितान सरस्ते निश्चित। तो कभी कभी गुणों के प्रभाव से देख सकते हैं उनके जीवन में ऐसे अनेक अनेक क्षण आते हैं, कभी उदासी होती है, मन ढंग से काम नहीं करता है, सब भ्रमित रहता है, ये सब होता है, ये सब गुणों के प्रभाव से होगा, टेस्टिंग है सभी, लेकिन हमें प्रोसेस को पकड़े रखना, तो निश्चित इन तीनों गुणों से हम निकल जाएंगे। तो जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, जो श्रवण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें हर पन्ने पर हर लाइन पे हर शब्द में माया क्या है उसका वर्णन है, वो जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसमें ध्यान करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, गहराई में चिंतन करते हैं, अन्वेषण करते हैं कि ये माया है, ये सच्चाई नहीं है, ये गलत है, कैसे है, बार बार उसको श्रवण करते हैं और ध्यान करते हैं, तो धीरे 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 ये माया का जो कवरिंग है वो कम होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोले कि ये जो मेरी पुस्तकें हैं, तो प्रभुपाद जी बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सबको जाकर पढ़ बुक दो, तो पुस्तक वितरण से क्या होगा कि लोगों की सुकृति, भक्तियों की सुकृति आएगी, पूरा माहौल जो ये गॉडलेस है, ये पूरा जो नास्तिक माहौल बना हुआ है ये छिन्न भिन्न हो जाएगा और लोगों के अंदर भक्ति के तरफ आने की प्रेरणा उनको मिलेगी। तो इसका ये प्रभाव होगा और इसका प्रभाव हो रहा है पुस्तक वितरण और कीर्तन और प्रसाद वितरण से। लेकिन प्रभुपाद जी बोले लेकिन ये मेरी पुस्तकें विशेष रूप से मैंने लिखी है मेरे भक्तों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये पुस्तकों को पढ़ना किसके लिए, कौन पढ़ेंगे, किसके लिए है, ये मेरे भक्तों के लिए। बाहर जो लोग हैं तो वो पुस्तक हाथ में लेने मात्र से ही वो माया से निकलना शुरू हो जाता है, केवल पुस्तक हाथ में लेने से, श्रीमद् भागवतम ये पढ़ने मात्र से थोड़ा सा मेरी अप्रिशिएशन करते हैं, ये अच्छा तो इतना उसका शुद्धि होता है, उसके अंदर भगवान को समझने की वो उत्कंठा इच्छा प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट अभी उत्तर ना ले, नहीं अभी नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कोई आएगा फरवरी तक लेकर, हाँ अभी मैं तैयार हो गया, लास्ट टाइम जो इंजेक्शन मिला था वो काम किया और अभी मैं तैयार, अभी मैं अभी पढ़ना शुरू कर, हम देखते हैं वो बोलते हैं हाँ काफी समय से मेरे को था लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, अभी मैं पढ़ना शुरू करूँगा। और फिर हम घर में पुस्तक होती है तो लोग पढ़ते हैं और फिर पढ़ पढ़ के समझते हैं धीरे धीरे, और फिर मंदिर आना शुरू करते हैं, भक्तों के संपर्क में आना शुरू, बहुत चेंज होता है, लोगों का जीवन बदलता है। लेकिन विशेष रूप से जो अपने जीवन को समर्पित किए हैं, जो समझे हैं, उनके लिए तो ये विशेष है कि वो डीप स्टडी करें, उनके लिए मात्र केवल पुस्तक को उठाना, श्री भागवतम पढ़ना, नाम पढ़ और ऐसे नहीं, उनके लिए डीप स्टडी की जरूरत है, डीप स्टडी की जरूरत है, केवल ऊपरी स्तर से नहीं है, डीप स्टडी, एक एक लाइन एक उस पर कंटेम्पलेशन, तो उपाय जी क्या कह रहे हैं, तो ये एक एक शब्द में साक्षात्कार का खजाना भरा हुआ है, ये साधारण शब्द नहीं है, एक शब्द भी साधारण नहीं है। हम लोग सोचते हैं वही बात है, वही वही होगा, वो क्या होगा, वही हम शैली में बात में है वही, तो रूपा जी बोलते हैं कि ये जो प्रकट हैं, तात्पर्य हैं, ये मेरी स्थिति है, ये मेरे भाव हैं, भक्ति के भाव हैं मेरे, ये जो प्रकट के रूप में प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये रूपा जी, और रूपा जी बोलते हैं ये कृष्ण उसको डिक्टेट करते हैं, कृष्ण गिविंग मी ऑल दिस, कृष्ण डिक्टेटिंग व्हाट टू राइट, तो ये कृष्ण के शब्द हैं, दिस इज कृष्ण वर्ड, परम सत्य। तो हम जब ये प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो भगवान से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी के माध्यम सीधा स्ट्रेट, तो माया कैसे सामने रही है जब भगवान सीधा हमको बोल रहे हैं, यदि हम कान खुले रख रहे हैं, और यदि हो जाएंगे क्लास में पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे तो क्या अनबन हो जाएगी, तो इसलिए अवेक जागृत उत्तिष्ठ जागृत वरम विभोक्ता, उठो जगो वर प्राप्त करो। तो ये जो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम है ये जागृति के लिए है, इसमें जग करके इसमें भाग लेना चाहिए, सोते सोते नहीं, रात को देर तक जगे हैं, बात कर रहे हैं और फिर सुबह उठकर सो रहे हैं, जब जगने का समय तक सो रहे हैं और जब सोने का समय तक जग रहे हैं, तो क्या होगा, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और धीरे धीरे उदास उठा जाएगी। भक्तों की चेहरे से देख सकते हैं अगर वो ढंग से जब नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो उदास हो जाते हैं, सब तरफ पॉलिटिक्स दिखाई दी, सब में प्रॉब्लम दिखाई दी, ये भक्त में ये प्रॉब्लम, वो भक्त में ये प्रॉब्लम, वो भक्त में ये प्रॉब्लम, इस मंदिर में वो प्रॉब्लम, उस मंदिर में ये प्रॉब्लम, यहाँ ये समस्या, वहाँ ये, मतलब एक जो भक्त है उसको माया में समस्या दिखती है और जो भक्त माया में है उसे भक्ति में समस्या दिखने लगती है, उल्टा हो जाता है। तो इसलिए अपने को हमेशा हष्ट पुष्ट रखना है, रेगुलरली श्रवण करके हष्ट पुष्ट रखना है। तो हमारा एक
जो मंदिर में जो भी जो दीक्षित भक्त हैं विशेष, उनका तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होना चाहिए, कैसे वो प्रभुपाद जी के पुस्तकों को सिस्टमेटिक पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके नोट्स ले करके, एक एक उसको गहराई से समझ करके, उसको डिस्कशन करके, उसको चिंतन करके, याद करके, मनन करके, उनका पूरा प्रोग्राम होना चाहिए प्रभुपाद जी के सब पुस्तकों को पढ़ने का। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के पुस्तकों को बिना पढ़े हम अन्य पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ कर दें तो बहुत डेंजरस है, रिस्क है। प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो वही है, माया के ही जिक्र है। हम लोग थोड़ा अभी रात के बारे में पढ़ेंगे, वो हाइयर लॉ पढ़ेंगे, तो आप खुद तो लो हो, आप हाई कैसे पढ़ोगे? और प्रभुपाद जी की पुस्तकें लो नहीं है, ये हाइयर है, लोएस्ट टू हाइयर सब है। प्रभुपाद जी बोल रहे ये मेरी क्षति है, और हम बोल रहे हैं लो है। प्रभुपाद जी ये बोल रहे मेरी क्षति है, ये भाव के लक्षण है परपट, और हम सोच रहे हैं ये लो है, इसका मतलब हम लोग हम नहीं समझ पा रहे हैं मेरी क्षति। तो ये माया से निकलने के लिए डिटर्मिनेशन जरूरी है, नहीं तो भगवान भी नहीं बजा पाएंगे। रूपा जी बोलते हैं, इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्गली डिटर्मिन टू ओवरकम दिस माया, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड ऑल्सो कैनॉट सी। तो इसे क्या चाहिए, उदासी चाहिए या हमेशा कूदना पांच पांच फीट आनंद से, उत्साह से? क्या अच्छा, तो उत्साह आनंद अच्छा, तो ये पूरा मूवमेंट आनंद का मूवमेंट है। लेकिन आनंद तभी होगा जब हम भक्ति में स्थित होंगे, जब हम भगवान के समय, नहीं तो दांत हो जाएंगे। इसलिए वो क्या है, भगवत गीता में शिथिलता कुछ हो, विगत चोरा, ये शिथिलता को छोड़ो, तुम उठो छोड़ो। ऐसे भक्तों को धीरे ढाले नहीं होना चाहिए भक्ति में, उत्साह से, उत्साह धैर्य निश्चयात, उत्साह से सेवा करें। जो भक्त उत्साह से सेवा करते हैं वो देखेंगे कि वो आनंद से पूरित होते जाते हैं, और उनका उत्साह बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमारे समक्ष ऐसा नहीं, महान उदाहरण है महान सन्यासियों के, वो इतने उम्र वाले हैं, 50 साल है, 60 साल के हमसे ज्यादा पूछते हैं, हमसे ज्यादा व्यस्त हैं, तो हमें उनको देख करके उत्साह आना चाहिए। देखो ये पॉसिबल है, 40 साल 50 साल उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है, हर क्षण को एक एक क्षण कम लग रहा है उनको, हमें चाहिए जिज्ञासा हो रही है, समय बहुत कम है, करने को बहुत ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा अनुभव हो रहा है कि समय बहुत कम है, मुझे बहुत कुछ करना है, तो उसे समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर है, जिससे ऐसा अनुभव हो रहा है। ये दिव्य आनंद है, ये इसको कोई धक्का नहीं कर सकता आसानी से, जिसको ये अनुभव नहीं हो रहा है, जिसको लग रहा है कि मुझे कितना कुछ करना है, यानी कि उसको कितनी उत्सुकता है भगवान की सेवा करने की। तो इसका जब ये उत्सुकता निकल जाती है तब पता चलता है कितनी ये महान चीज थी उत्सुकता होना भगवान की सेवा। यही रियलाइजेशन है, भगवान की सेवा करने के लिए उत्साही होना यही लक्षण है प्रगति का। तो कई बार लोग सोचते हैं हम कैसे पता लगाएं कि ये सेल्फ रियलाइज गोल है, आत्म साक्षात्कार किए हुए कि नहीं किए हुए। यही गुण, यही लक्षण, जिसके अंदर भगवान की सेवा करने का अत्यधिक उत्साह है, यही भगवान का दर्शन करना है। ये नहीं मैंने भगवान को देख लिया, भगवान की सेवा करने का उत्साह करना ही मतलब भगवान को देखना है। क्योंकि भगवान को देख के क्या करेंगे, ऐसे बस देख लिया अभी वापस ऑफिस जाना शुरू कर दिया, काम शुरू देख लिया, देख लिया दोबारा से माया था। ये क्या देखना है, देखना मतलब भगवान की सेवा में लगना है ना, और क्या देख के क्या करेंगे, देखना मतलब सेवा करना। तो देखने से महत्वपूर्ण है सेवा का उत्साह, वो वास्तविक देखना है। और फिर भगवान अपने अनुकंपा से जब दर्शन देंगे तो फिर वो जो देखना है वो वास्तविक देखना होगा। तो इसलिए ये श्रवण और कीर्तन निरंतर चलते रहना चाहिए। भक्तिनाथ जी महाराज एक आगंतुक उनके पास आया, मेहमान आया उनके मठ में, तो वो उस मेहमान को बोल रहे हैं कि कीर्तन सतत होना चाहिए, कॉन्स्टेंट कीर्तन होना चाहिए, सतत कीर्तन होना चाहिए। अगर तुम बोलो कि मेरा पुत्र मरने जा रहा है तो मैं बोलूंगा मरने दो। तो लोग ये सुनेंगे सामान्य लोग बोलेंगे पागल है लोग, अरे मेरा पुत्र मरने जा रहा है, बोल रहे कीर्तन करो। कई बार लोग बोलते अरे भाई अभी कीर्तन बंद करो, अभी अपशगुन हो गया, अभी कीर्तन बंद करो। तो अपशगुन से निकलने का एक तरीका है कीर्तन करो। तो ये अपशगुन शगुन दोनों से परे है। कीर्तन जीव का नित्य धर्म है, तो वो इस जगत की चीजों से प्रभावित नहीं होता है, सृष्टि प्रलय पोषण से उसका कोई मतलब नहीं है। ये बता रहे हैं स्वयं भू मनु कि यक्ष ने तुम्हारे भाई को मार दिया, वो ठीक है जो भी है, लेकिन वो उसके तुम पागल क्यों बन रहे हो कि वो मेरा भाई था, इसलिए वो मेरा माता है, वो मेरे पिता है, वो क्या हो गया, मेरा भाई मर गया, मेरा पिता मर गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब अंततः बाह्य है, ये सब वास्तविकता नहीं है। वास्तविक केवल कृष्ण कीर्तन, केवल कृष्ण की सेवा। तो कोई भी चीज हमको उससे डायवर्ट नहीं कर सकती, नहीं करनी चाहिए डिस्ट्रैक्शन। कृष्ण की सेवा से हमें कोई भी चीज डाइवर्ट नहीं करती होनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कुछ भी हो संसारी कोई भी चीज, क्योंकि वो सब चीजें अगर कोई हमारे को भजन से डायवर्ट कर रही है जिससे करीबों माया है, तो वो हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी होना चाहिए, मन के अंदर कोई भी साधन जो हमारे भगवान की सेवा से हमको चित करते, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए हम देखते हैं गुरु महाराज के पिता उत्तान था, तो वो जब उनको देखा, जब ध्रुव महाराज तो इतने ज्यादा बड़े भक्त हैं, इतने महान आदमी हैं कि 5 साल की उम्र में तो ये जंगल चले गए और जंगल जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया, तो भी मुझे उनका ध्यान में जरूरत नहीं है कि वो शादी मैं उनकी देखूं कि वो विवाह करें कि नहीं करें, विवाह करवा के जाऊं। जो इतना बड़ा अपने को संभाल लिया है, अभी उसके लिए विवाह करना ना करना ये कैसे करेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जैसे ही पता लगा लिए जंगल चले, छोड़ दिए अपनी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी नहीं रही थी। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल है, सबसे बड़ी एक ही जिम्मेदारी है साक्षात्कार, आत्म साक्षात् कृष्ण कीर्तन, माया से निकलना ही हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है, और कोई जिम्मेदारी नहीं है जीव की, एक ही जिम्मेदारी है माया से निकलना। और यदि कोई जिम्मेदारी का बहाना बना करके हम भक्ति में कमी कर रहे हैं तो वो माया है। मैं क्या करूं, टाइम नहीं है, घर के ये सब काम है जिससे मैं भजन नहीं कर सकता हूं, इसलिए तो वो माया है। तो ये हो सकता है कि क्रमिक रूप से हम उससे निकले, दैट्स ओके, लेकिन निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि अंतिम में हमारा एक ही कार्य है, एक ही कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। तो ये जो सृष्टि प्रलय और सृजन है चलता रहेगा, चलता रहा है, इसमें व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक महान आचार्य, तो जन्म होते ही बच्चे का वो माँ मर गई था, अभी क्या करें, अभी इसका पालन पोषण कौन करेगा। तो बताया गया एक श्लोक है, मुझे याद नहीं, कि जैसे ही बच्चा का जन्म होता है तुरंत माँ के स्तन में दूध आया था। ये व्यवस्था कैसे पड़ती है, माँ को तो कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, यानी कि बच्चे के पोषण करने का जो अरेंजमेंट है वो भगवान ने किया है। तो इसलिए ये जो पोषण सृजन पोषण और संहार है, ये प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम किसी का पालन पोषण या संहार नहीं करते हैं, ये 3 गुण करते हैं। हम गुणों के द्वारा कठपुतली की तरह से काम करते हैं, निमित्त बनते हैं गुणों में, लेकिन करता है वो गुण। और ये गुण हमारे ऊपर प्रभाव किए हैं क्योंकि हम इस जगत का भोग करना चाहते हैं। इसलिए यदि कोई चीज हमारे हाथ में है तो वो है अपने को भगवान श्री कृष्ण की शरण में ले आने के रास्ते पर, रास्ते की शुरुआत कर देना, वही एकमात्र चीज है जो हम वास्तव में कुछ कर सकते हैं। 3 गुणों में भी हम कुछ कुछ कर सकते हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के अंतर भी
हम कुछ कुछ कर सकते हैं, भेद या चॉइस कि मुझे तमोगुण चाहिए कि सत्वगुण चाहिए कि रजोगुण चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन यदि वो अंतिम लक्ष्य उसका शुद्ध सत्वनारा नहीं है और केवल तीनों गुणों में ही रहना है, तो भले ही हम सत्वगुण में आने का भी प्रयास करें, यानी कि सत्वगुण में आनंद लेने का प्रयास करें, जैसे कि सामान्य एजुकेटेड लोग या साइंटिस्ट या थोड़ा जो सत्वगुण में आनंद लेने का प्रयास करते हैं, शांति का जीवन जीना चाहते हैं, ओम शांति, तो वो तीनों गुणों के अंदर ही काम हो रहा है, तो चाहे ओम शांति हो तो अपने आप ओम शांति परिवर्तित हो जाएगी तमोगुण में निश्चित, क्योंकि वो गुण तीनों आपस में कोई स्थिर रहते नहीं है, तीनों गुणों का ये कार्य है और ठीक नहीं रह सकते। तो आज ओम शांति है, कल को शेर बनना पड़ेगा, फिर रजोगुण आ जाएगा, फिर तमोगुण आ जाएगा निश्चित। तो जब तक शुद्ध सत्व में आने के लिए प्रयासरत नहीं है तब तक हम बहुत रिस्क की लाइफ है। तो क्या निर्गुण महाराज हो, मैं सत्वगुण में रहूंगा, खूब दान करूंगा, खूब दान करूंगा, कोई बुरा नहीं करूंगा, सब अच्छा करूंगा, फिर भी छुपकरी बनना पड़ा। तो ये तीनों गुणों में चॉइस करना, बहुत कम चॉइस हमारे हाथ में है, लेकिन वो भी घुसता है, लेकिन निश्चित रूप से एक चॉइस हमारे हाथ में है। यदि हम मनुष्य हैं और मनुष्य में भी यदि हम तमोगुण से बहुत अधिक प्रभावित नहीं है, तो वो है कि भगवान की शरणागति लेना भक्तों के माध्यम से, वही एकमात्र चीज है जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो वास्तव में कुछ करने योग्य है, अन्यथा तो वही चक्र है, वही चक्र है, ऊपर जाओ सैरी, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, बता देते हैं वो सैरी व्हील, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाओ देखें मेले में बड़ा चक्कर लगाते हैं, तो जो आदमी नीचे आए वो सोचेगा कब ऊपर पहुंचना, लेकिन ऊपर पहुंचने में ही जाना पड़ेगा अपने आप, तो इसलिए वो व्यर्थ है ऊपर नीचे चक्कर में चलना। तो इसलिए हमें अंतःकरण में स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, सृष्टि में भी पालन पोषण में कुछ लेना नहीं है, केवल उतना लेना देना है जितना इस जगत से बाहर निकलने के लिए जरूरी है, उतना ही लेना देना है और क्या नहीं, ये कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सर्व मनु बता रहे हैं कि तुम क्यों इसमें इतने आवाज सुधरे कि मेरे भाई को मार दिया, इसलिए वो मेरे दुश्मन हो गए, सबको मार दो, वो सब माया है। तो वो ठीक है, राजा की तरह से आपने उनको पनिशमेंट दे दिया, बस ठीक, अभी गुणों के प्रभाव में रहो, नहीं तो जो लक्ष्य हो जाए जड़ भरत, एक हिरण भरत महाराज, हिरण हिरण को देखे और बच्चा गिर गया है, तो अभी थोड़ा कि उस बच्चे को अभी उसका पालन पोषण शुरू कर दिए, अभी उससे लगाव और उसका पालन पोषण अभी था, उसका चिंतन करने लगे, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यह आसक्ति से, भौतिक आसक्ति से, इंसीरियस इंसीरियस, ये छुपके छुपके अंदर आ रही है, पता नहीं लगता कैसे अंदर आ रही है, ये तो बोलता है इंसीरियस बीमारियां होने का इंसीरियस। 10 साल पहले कीटाणु गुजरा, कुछ पता लगा, अचानक पता लगा आज हो ये हो गया, एड्स हो गया, पूरा शरीर खत्म हो गया अंदर से, 10 साल तक खत्म लगा लेकिन अंदर से पूरा शरीर खत्म हो गया, ऐसा इंसीरियस। तो ऐसे ही ये माया बहुत इंसीरियस है, बहुत छुप छुप के अंदर एंटर करती है, पता भी नहीं आएगा, इसलिए बहुत पता नहीं जरूरत है। तो हर दिन सुबह 4 बजे से पहले उतना ही है, ये केवल कहने के लिए नहीं कहा गया है, अगर आप नहीं उठेंगे तो प्रभावित होंगे, ऐसा नहीं मैं तो 10 साल से उठा हूँ, आज नहीं उठूंगा तो क्या, तो आज जब नहीं उठेंगे तो 1% माया ने पकड़ लिया, फिर अगले सप्ताह बोलेगी तो क्या है, चलो कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी हर सप्ताह में एक दिन छुट्टी ले सकते हो, ऐसे करके धीरे धीरे, जैसे वो कहानी है ना, एक रेगिस्तान में एक ऊंट था, आदमी था उसके पास ऊंट था, तो वो आदमी अंदर टेंट में सो रहा था, तो रात को बहुत ठंड थी, तो ऊंट ने बोला कि बहुत ठंड है बाहर, बस केवल ये मुंह मैं अंदर रख लेता हूँ, बस तो बोला ठीक है मुंह रखने में क्या है, ठीक है मुंह रख लो अंदर, तो वह बोला और थोड़ा ये एक हाथ अंदर रख लेता हूँ आगे वाला पैर, हाँ तो ठीक है ये रख सकते हो, ऐसे करके पता लगा बाद में आदमी बाहर और ऊंट अंदर चला गया। तो ये माया ऐसे ही करती है, छोटा फोट हुआ करके आती है, तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत, शरस्त धारा है। तो इसलिए हर दिन सूर्य माला पश्चात होना ही चाहिए, हर दिन सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, इसलिए कहा गया मन को मारो, सुबह उसके 100 बार जूते मारो उसको और झाड़ू झाड़ू से पीटो रात शाम को। तो वो कहने मात्र के लिए नहीं कहा गया या पढ़ने मात्र, ऐसा कहा है? ओके सुन लिया ओके। नहीं इसका मतलब है अमल करना कि जब जब मन हमको बोले थोड़ा एंजॉयमेंट कर लो कोई बात नहीं तब उसको मारो डंडा, नहीं करना है उल्टा करो तब आप देखेंगे एकदम ध्यान आ जाएगा। इंद्रियों के वश में आना डिप्रेशन का कारण है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आनंद का कारण। इसलिए जो लोग उदास होते हैं उनके चेहरे हमेशा मुरझाए होते हैं और जो गोस्वामी होते हैं वो हमेशा आनंद पसंद रहते हैं। तो इसलिए गोस्वामी बनना चाहिए, उदास नहीं बनना चाहिए। इसलिए मन को हमेशा लाश को डंडे मार के रखना चाहिए, मन कभी छूटना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा छूट दिया ऊंट की तरह से हमें पूरा कंट्रोल कर लेगा। ये तीनों गुण बहुत खतरनाक है और इसके लिए प्रिवेंशन है हर क्षण केवल एकमात्र कृष्ण की समाधि। इसलिए जो लोग ब्रह्मचारी हैं उन्हें ब्रह्मचारी रह सकें सर्वोत्तम, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि केवल कृष्ण चिंतन में अपना मन लगा सकते हैं और कोई झंझट ही नहीं। बहुत सरल हो जाए और कुछ काम नहीं, और कुछ एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र प्रेशर ही है और कोई प्रेशर को करेगा ही नहीं। ग्रंथ में तो बहुत सारे अन्य प्रेशर हैं, आप चाहते हैं केवल भक्ति करना लेकिन अन्य लोग हैं संसार है ये भी करना है सामाजिक ये भी करना है वो भी करना ये भी करना ये भी करना, बहुत सारे डिस्ट्रेक्शन आएंगे। लेकिन यदि कोई ब्रह्मचारी है तो सब और कुछ काम है नहीं, वो अपनी जबरदस्ती कुछ और काम ले लो दूसरी बात है और कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, कोई उसको नहीं बोला है तुम उल्टा चला कुछ करो, कोई नहीं बोल रहा है, सब यही कह रहे हैं कि तुम बल्कि उल्टा चला करेगा तो वो डांटेंगे अरे तुम ब्रह्मचारी तुम ये करते हो। कितना अच्छा है यदि कोई विवाह से पहले ये समझ जाए सुने तो उसको कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके केवल ये सारा दिन दिन रात केवल कृष्ण चिंतन कृष्ण भक्ति यही में पूरा समय लगाए तो उसके लिए बड़ा सरल हो जाएगा तीनों गुणों से बाहर रहना। और फिर अंतकाल जमाने वा चले वरम यहाँ से आते समाव यहाँ संशय। तो इसलिए माया को जीतने का सर्व निश्चय कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण क्या है कुछ गोल रोल तो आध्यात्मिक गुरु की सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है 16 माला ध्यान पूर्वक जप करना। तो इससे महत्वपूर्ण कोई और रास्ता नहीं है। जब पहली छात्र थी तो अभी तक जितने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए थे उसमें सबसे बड़ा फेस्टिवल, तो उसमें जिस दिन फेस्टिवल था उस दिन तो लग रहा था कि कमरे से ऐसे भाग रहा था, पानी कैसे निकल रहा है, इतना सारा कुछ करने गए बहुत मुश्किल था, भागा दूर भागा दूर भागा दूर भागा दूर। तो भक्ति विकास महाराज आए थे उसमें तो मैंने प्रणाम किया तो देख रहे थे कि भाग रहा हूँ तो पहले यही पूछे चैंटिंग किए डिड यू चैंट योर रॉन्ग, मैंने बोला नहीं तो भी नहीं किया था, सुबह से उठी तो भागा दौड़ी शुरू हो गई थी तो अगर हम श्रवण और कीर्तन में कमजोर हो जाएंगे उस दिन भी तो फिर जो सेवाएं भी करेंगे तो वो भी सही चेतना में नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से मैनेजमेंट करो तो ये भी मैनेज करो कि साधना कम से कम चैंटिंग तो कम से कम फेस्टिवल के दिन भी हो, रीडिंग ओके अगर आप एक दिन नहीं कर पाए हैं एक दो दिन नहीं कर पाए तो तीसरे दिन इसको मेकअप कर लो फेस्टिवल के तुरंत बाद, लेकिन कम से कम 16 माला जब वो तो किसी भी हालत में होना ही चाहिए, इससे ज्यादा प्रायोरिटी और कोई नहीं सामान्य तरीके से। विश्व प्रथम चंद से कई बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वो प्रभुपाद जी के सेवा सेवक थे, तो बहुत तल्लीनता से वो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छे थे। तो वो कह रहे थे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी मेरी चैंटिंग नहीं हो पाती है। प्रभुपाद जी बोले पूरी नहीं हो पाती है सोने माले। प्रभुपाद जी बोले डोंट वरी, आई विल चैंट फॉर यू, मेरी सेवा करते रहो, वो आपको बचा के रखेगी। तो क्योंकि वो प्रभुपाद जी की सेवा में तल्लीन है, हृदय से पूरा कर पा रहे हैं अच्छे से, इसलिए उनको प्रोटेक्शन है। ऐसे हमारे गुरुदास लोग ने महाराज से पूछा, मेरी साधना नहीं हो पाती है ढंग से, तो महाराज बोले कि मेरा ध्यान रखना ही आपकी साधना है। तो ऐसे शुद्ध भक्त की यदि हम सेवा में तल्लीन है तो दैट्स पॉसिबल, लेकिन सामान्य रूप से तो ऐसा समझ नहीं, इससे हमको साधना लेना चाहिए। जब तक कोई ऐसा विशेष आदेश ना हो, विशेष अनुमति ना हो, तब तक हम चैंटिंग को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो इसलिए अरेंज करो और हम देखेंगे, ऐसे मुश्किल नहीं है यदि हम खा तो रहे ना उसे। हाँ तो यदि आप इतने आवाज व्यस्त हैं तो मैं भी अलाउ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाने का समय मिला है, बात करने का समय मिला है, कुछ भी और करने का समय मिला है सेवा के अलावा, लेकिन चंडी का समय ऐसा एक भी क्षण नहीं होना चाहिए। तो ओके, यदि आप इतने ज्यादा सेवा में मशहूर है कि आपको खाने का, किसी से कुछ बात करने का, बैठने का, कुछ भी 100% पूरी तरीके से, देन कृष्ण विल प्रोटेक्ट, अन्यथा नहीं। अक्सर क्या होता है कि काम सेवा तो सही है, लेकिन हमारे में भी थोड़ा ये होता है कि नहीं होगा तो चलेगा ऐसा, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इससे प्रयास यही होना चाहिए कि सोच दिन अरेंज करो, सब सब सिस्टमेटिक, सबको सेवा दो, टाइम निश्चित है, आपस में दूसरे को हेल्प करना चाहिए कि ठीक है प्रभु जी, ये 2 घंटे में चैंटिंग करूंगा, इस टाइम में माला की चैंटिंग करूंगा, इस टाइम में जो भी मेरी सेवाएं हैं ये आप संभालो उस समय। तो ऐसा अरेंज होना चाहिए सबको आपस में, 2-3 मैनेजर्स हैं तो ठीक है ये सेवा इस समय कर रहा हूँ, छुट्टी, वो दूसरा बच जाए, बिल्कुल शांति एकांत से कर, ऐसा होना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे राज भागवतम की जय, हरे गोपाल की जय।